ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 10 అధ్యాయ 9, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बाधा जाना, श्लोक संख्या 6. हमारे पीछे लोग आवृत्ति करें. सज्जात कोपः स्फुरितारुणाधरम् सन्दस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषारी दृशत मनारहो जघास हयंगवमंतरं गतः संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम् యదద్భిర్దధిమంథభాజనం భిత్వా మిసారే దిశదస్మనారహో జఘాస హయంగవనంతరం గతః సజ్జాత కోప స్ఫురితారుణాధరం సందస్య దద్భిర్దధిమంథ భాజనం భిత్వా మిశాశ్రూ దిశదశ్మనారహో జఘాస హయంగవమంతరం గతః. దిశదస్మనారహో జఘాస హయంగవనంతరం గతః. మాతాజీ కోప స్ఫురితారుణాధరం ఛందస్య దద్భేదవిమంథ భాజనం విత్వా మిశాశ్రూ దిశదశ్మనారహో జఘాస హయంగవనంతరం గతః. शब्दार्थ। सज्जात कोपः, इस तरह कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर स्फुरित अरुणा अधरम सुजे हुए लाल लाल होठ संदश्य काटते हुए दधि अपने दांतों से दधि मंद भाजनम मटकी को भित्वा तोड़ते हुए मिशा अश्रु आंखों में नकली आंसू भरकर दृशत अस्मना कंकड़ से रह एकांत स्थान में जघास खाने लगे है अंगवम ताजा मक्खन अंतरम कमरे के भीतर गतः जाकर। अनुवाद एवं तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तात्पर्य यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जिस प्रकार पौधों में तुलसी का जो पौधा है तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। दिन में एकादशी का जो दिन है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। स्थानों में पवित्र स्थानों में द्वारका नगरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। नदियों में गंगा भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार पवित्र महीनों में जो कार्तिक मास है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान इस महीने में बहुत खुश होते हैं यदि उनका कोई भक्ति करता है। गीता में भगवान कहते हैं ऐसे तो भक्ति जो है उसका अच्छा फल होता है। यदि जीवन में किसी ने कुछ भी भगवान के लिए किया है तो भगवान उसका शाश्वत फल देते हैं। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से रक्षा हो जाती है यदि जीवन में किसी ने भक्ति का कुछ भी कार्य किया है तो। लेकिन ये महीना एक विशेष महीना है। यदि इसमें जो भक्ति करते हैं यदि अपने भक्ति को बढ़ाने का संकल्प लें, जो नहीं करते हैं वो कुछ भी भक्ति का क्रियाकलाप करें, तो इसमें भगवान कुछ एक्स्ट्रा लाभ देते हैं। जैसे अभी दीपावली का महीना आ रहा है, वही दुकान होता है, वही वस्तु होती है, वही कपड़े, वही कार। जैसे कुछ समय कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया था काफी प्रचार में कि किसी कंपनी के मालिक ने अपने वर्करों को बोनस के रूप में 600 कारें डिस्ट्रीब्यूट किया दीपावली के अवसर पर, बोनस में कार दिया 600 कार। तो लोग सोच रहे थे 600 कार उसने इतना बांटा, महंगी महंगी कारें बांटी हैं तो उसका आमदनी कितना होता होगा। हाँ, तो ऐसा चर्चा चल रहा था न्यूज के अंदर, कुछ लोगों ने बताया। तो दीपावली है, दीपावली में हर वस्तु पर हर दुकानदार कुछ न कुछ ऑफर देते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार ये जो महीना है ये भगवान की तरफ से दिया गया ऑफर है कि यदि हम कुछ भक्ति के लिए क्रियाकलाप करते हैं एक्स्ट्रा, तो भगवान उसको हमको एक्स्ट्रा फल देते हैं। और यही कारण है कि भक्त लोग कुछ न कुछ एक्स्ट्रा व्रत उपवास या कुछ न कुछ चीजें अपने जीवन में इस महीने के लिए मानते हैं। जैसे कुछ लोग तीर्थयात्रा में जाते हैं, महीना भर धाम में वास करते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा राउंड करते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, क्योंकि कार्तिक मास का ज्यादातर बहुत पुराणों में चर्चा है इस व्रत का, क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रिय है ये महीना। तो प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी इस महीने में हम भक्तों के विशेष रूप से क्या करना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भागवत श्रवण करिए और नाम जप करिए, दो चीजें बढ़ाना, दो चीजों को बढ़ाइए, दो चीजों में रुचि लाइए, भागवत श्रवण, भागवत पठन और नाम जप, नाम संकीर्तन, ये चीज करिए, ये सबसे अच्छी चीज है। भक्ति के बहुत सारे विधि विधान है, लेकिन ये दो बहुत ही अच्छी चीजें हैं हमारी भक्ति का पोषण करने के लिए, तो ये बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। इसी संदर्भ में पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें दामोदर महीना का गुणगान किया जा रहा है। दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभु, आप लोग भी बोल सकते हैं क्योंकि पवित्र श्लोक है। दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभु प्रभवद्दर्श्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। तो दामोदरम प्रपद्येहम, हम भगवान दामोदर की शरण ग्रहण करते हैं जो श्री राधा रमणम प्रभु, जो श्रीमती राधा रानी के प्रेमी हैं। प्रभवदत्त से तत्प्रेष्ठ है, जिनके कारण, जिनकी महिमा के कारण कार्तिकः सेवितो भवेत्, इस कार्तिक मास का लोग सेवन करते हैं या कार्तिक मास में लोग भगवान की सेवा करते हैं, दोनों भाव है। तो ऐसे दामोदर महीने में भगवान दामोदर की हम विशेष रूप से आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और इस क्रम में अभी हम श्रीमद् भागवतम के नवें स्कंद में दामोदर लीला के ऊपर जो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है उस विषय में हम क्रम से सुनते जा रहे हैं। और हम सुनते आ रहे हैं कि वास्तव में भगवान की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीलाएं हैं, लेकिन ये जो लीला है ये अपने आप में एक अद्भुत लीला है, क्योंकि ये सृष्टि में एक ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें भगवान डरे हुए हैं, भगवान भय में हैं, भगवान माफी मांग रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू आ रहा है। क्योंकि इसके पहले जितना भी लोग भगवान के पास जाते हैं, सब लोग हाथ जोड़कर जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा जी हो, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक भगवान स्वयं इतने डरे हुए हैं और भगवान अपनी माता से माफी मांग रहे हैं कि मैया छोड़ दे, और गलती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे जो कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ गलती स्वीकार कर रहे हैं कि गलती होगी, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। तो बहुत ही मनोहर लीला है। और इस लीला के ऊपर प्रायः जितने भी प्रसिद्ध टीकाकार हैं भागवतम के, सभी लोगों ने अपना कुछ न कुछ वक्तव्य दिया है, अपना अपना भाव दिया है। बहुत सुंदर भाव है, और सुंदर भाव की व्याख्या परम पूज्य राधाभुवन गोस्वामी महाराज का कथा सुनेंगे तो बहुत ही रसमय कथा है, प्राय सब लोग उसी कथा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बोलना अभी क्योंकि 4-5 दिन सब यही सब सुनते आ रहे हैं, तो सब लोग वही कथा रिपीट हो रही है, तो लेकिन फिर भी ये भागवती कथा है, नित्य नवीन, भगवान और भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला सब भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का जो गुण है नित्य नवीनता, तो नित्य नवीनता भगवान की कथा में भी रहती है, कितनी बार भी सुना जाए कुछ न कुछ नया ही रहता है। तो अभी जितना मैंने गुरुजनों और वैष्णवों के मुख से सुना है, थोड़ा अपने भाव उस पर व्यक्त करने का प्रयास करूंगा इसी श्लोक के ऊपर। तो इस श्लोक की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संजात कोपह, पहला शब्द है संजात कोपह और उसका शब्दार्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तरह कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर। इस तरह कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर मतलब क्रोध होने का कोई कारण है जो पहले हम सुन चुके हैं, लेकिन ये लिंक थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, जो लिंक नहीं जोड़ेंगे तो फिर आगे कथा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कुछ लोग कथा में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तो इसलिए इसका शुरुआत ही हो रहा है इस तरह जब कृष्ण क्रुद्ध हो गए। तो कृष्ण क्यों क्रुद्ध हो गए, हाँ तो कृष्ण के क्रुद्ध होने का कारण था, दो श्लोक पहले इस कारण को बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह सोकर उठे हैं और उठने के बाद प्रायः ऐसा होता था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण से पहले बेड छोड़कर उठ गई हैं, पहली बार ऐसा हुआ। और क्यों हुआ है, क्योंकि माता जी के अंदर ऐसा ख्याल हुआ कि ये बार बार कंप्लेन आ रहा है, बार बार शिकायत आ रहा है माखन का कि माखन खाता है, माखन चोरी करता है, तो बहुत सारे कंप्लेन आ चुके थे, वो भी बहुत मधुर लीला है कंप्लेन का, यदि उस कंप्लेन के ऊपर चर्चा करने जाएंगे तो कम से कम एक घंटा लग जाएगा, क्या कंप्लेन आता था, बहुत मधुर कंप्लेन है माता यशोदा से। तो माता यशोदा तंग आ गई थी और उन्होंने सोचा कि हो न हो हमारे लाला को हमारे घर का माखन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे घर का जो माखन है वो सब दास दासियां बनाती हैं, नौकरानियां बनाती हैं, और जो घर के लोग माखन बनाते हैं बेचने के लिए या घर के लिए उसका अलग भाव होता है, क्योंकि बेचना है तो अच्छा बनाएंगे, घर का भी खाना है तो ख्याल रखेंगे कि अच्छा बने, तो हो सकता है हमारे यहाँ के दस दासियां बनाती हैं तो अच्छा माखन नहीं होता होगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी कृष्ण के लिए मैं खुद अपने हाथ से माखन बनाऊंगी, पहली बार ऐसा सोचा उन्होंने, इसके पहले तक माखन सब दास दासियां ही बनाती थी। तो उन्होंने जितने भी दास दासियां थी सबको नियुक्त कर दिया अलग अलग कामों में, और फिर माता यशोदा, क्योंकि जैसे कि उस दिन असीम कृष्ण प्रभु चर्चा कर रहे थे अपनी कथा में कि जो माखन निकालने का काम होता है वो सुबह सुबह ही होता है ब्रह्म मुहूर्त के पहले, और जो कि हम तलाशरी में कर रहे हैं, और कभी कभी समस्या भी होती है क्योंकि सुबह सुबह उठ के उसको निकालना होता है, तो सुबह ही माखन निकाला जाता है, इससे धूप से पहले भी माखन निकाल दिया जाए तो उसका जो घी बनता है या उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है। तो सुबह सुबह माता जी उठ गई, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रायः भगवान कृष्ण उठते थे माता का स्तनपान करते थे, स्तनपान करा के माता कृष्ण को संतुष्ट कर देती थी, इसके बाद वो जाती थी दूसरे क्रियाकलाप करने के लिए, लेकिन अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाना है और माखन निकालना है, तो भगवान कृष्ण को सोला हुआ छोड़कर चली गई माखन निकालने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उठे और उठने के बाद थोड़े नींद में इधर उधर हाथ मारे कि है कि नहीं बेड पर कोई, और देखे तो बेड पर कोई है नहीं, उनका नींद खुला, और नींद खुलने के बाद कुछ ही दूरी पर माता जी थी, कुछ ही दूरी पर सदा मैया बैठी थी, और वहां पर जो चर्निंग हो रहा था माखन उसका आवाज उनके कान में आया। फिर भगवान कृष्ण उठे और धीरे धीरे छोटे छोटे पैर हैं भगवान के, और चल के माता यशोदा के पास गए। उस समय माता यशोदा के भाव का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कितनी निमग्न है, किस भाव में वो भगवान के लिए माखन बना रही हैं और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, एकदम चिंतन में निमग्न है। कृष्ण उठ गए, उठकर आ गए, आकर उनके पास खड़े हैं और माता यशोदा के भाव को देख रहे हैं, लेकिन माता यशोदा कोई बाह्य सुधी नहीं है, पूरी कृष्णमय चेतना है, जो बोले कृष्ण भावना भावित चेतना। स्पेशली यदि भगवान के लिए हम कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है माता यशोदा पेश कर रही, किस भावना में भगवान को कुकिंग करना चाहिए, स्पेशली कुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग बताया गया वो है हमारा आहार, और आहार में भी जब कुकिंग होता है, कोई कुकिंग करने समय का जो भाव है वो अन्न में प्रवेश करता है, तो यदि इस भावना से प्रसाद बने और यदि उसको खाकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन का पोषण करें तो बहुत ही उपयुक्त होता है। और माता यशोदा इस तरीके से देखा जाए तो भगवान के लिए भोजन की तैयारी कर रही हैं, उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हैं, और पूरा पूरा निमग्न है। श्री राधा राज बिहारी श्री सीताराम लखन श्री गौर अखिल प्रभुपाद की जय। तो पूरा पूरा निमग्न है उनकी चेतना, दो श्लोकों में उनके भाव का वर्णन कर रहे हैं कि माता यशोदा का चिंतन कैसा है, किस भाव में वो माखन निकाल रही हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है और सीखने लायक है साधक भक्तों के लिए कि किस भाव में भगवान की सेवा होनी चाहिए। भगवान खड़े थे, माता को कोई वाह सुधि नहीं थी और वो मथनी चला रही थी, भगवान कृष्ण ने अपना हाथ लगाया मथनी के ऊपर और अचानक माता यशोदा का जो भाव था वाह सुधि वापस आई। माता यशोदा ने देखा कि लाला बगल में खड़ा है, और हाथ मथनी पर रखा हुआ है। अभी सोचिए माता यशोदा कितनी बड़ी है, हाँ, और कितना वेग से मथनी चलता है। तो माता यशोदा को एक बार आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया कि इसने हाथ लगाया और मथनी रुक गया, उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो वृंदावन की लीला है यहाँ पर ऐश्वर्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता है, कुछ क्षण के लिए आता भी है लेकिन तुरंत माधुर्य भाव हावी हो जाता है और ऐश्वर्य को भुला देता है। इसलिए जब देवकी और वसुदेव का भाव है ऐश्वर्यमयी भाव है, वो सदैव प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्तुति नहीं करता है। यहाँ भगवान कभी कभी बालकों के साथ खेलते हैं, तो खेलने में दो पक्ष होते हैं और जो पक्ष हार गया होता है वो तो जीते हुए पक्ष को घोड़ा बनते हैं, हारा वाला पक्ष, और जीते हुए पक्ष को घोड़ा बैठ के चलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है कुछ समय तक। तो कभी कभी खेल में तो हार जीत का निर्णय होते रहता है, तो कभी कभी जिस पक्ष में कृष्ण होते थे वो पक्ष हार जाता था। अभी हारने के बाद फिर कृष्ण को घोड़ा बनना पड़ेगा और उनके ऊपर कोई बैठेगा और फिर बोलेगा चल घोड़े, तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था अच्छा नहीं लगता था, तो बोलते थे नहीं मैं घोड़ा थोड़ी बनूंगा, मुझे घोड़ा नहीं बनना है। तो और जितने ग्वाल लोग थे इकट्ठा होते, आप घोड़ा क्यों नहीं बनेगा, नहीं मैं मुझे घोड़ा नहीं बनना है। बोले नहीं सब लोग बना, आपको ही बनना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा कैसे मैं घोड़ा बन सकता हूँ। तो फिर मीटिंग होती थी और मीटिंग में प्लानिंग होता था कि तुम राजा का बेटा है ना, जा तुमको नहीं खिलाएंगे, अभी तुमको टीम से बाहर निकल दिया जा रहा है, तुम राजा होगा अपने घर का, हमारे बीच में राजा नहीं है। और इस प्रकार भगवान को खेल से निकाल दिया जाता था, भगवान बैठते थे और उनके सामने खेल होता था, भगवान का मन नहीं लगता था क्योंकि देखने में और सामने खेल और मन नहीं लगता था। फिर भगवान कृष्ण आते थे और दोबारा बोलते ठीक है चलो घोड़ा बन रहा हूँ, हमको भी टीम में शामिल करो। तो इसलिए उनको कोई मानता नहीं था। हाँ, जैसे गोवर्धन लीला में भी हम देखते हैं, भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया अपने हाथ के ऊपर तो उसमें तो डर था, लोग पानी से मार खा रहे थे गई और सब लोग बह रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया सब लोग अंदर चले गए, एक बार भाव में सब लोग अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद जब देख रहे हैं इतना बड़ा पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो सब लोग डर गए, अगर पहाड़ नीचे गिर गया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो कैसे उठ गया, तो उनको नहीं लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने उठाया है, तो सब लोग ने अपना डंडा निकाला और डंडा लगा कर खड़े हो गए कि कहीं गिर गया तो हम लोग दब जाएंगे मर जाएंगे। भगवान कृष्ण को देखकर हंसी आई, फिर भगवान ने कहकर थोड़ा सा नीचे किया, हल्का सा अपना ढीला किया और खटखट जितने भी लोग बांस लगाए सब टूट गया, अरे गए गए, फिर भगवान ने संभाल लिया। हाँ, लेकिन फिर भी लोग को विश्वास नहीं होता है कि ये जो कृष्ण है भगवान है। कोई आपदा विपत्ति आती है, पुतना को मारा, सक्तासुर को मारा, वृत्तासुर को मारा, कितने लोगों को मार रहे हैं भगवान। हाँ, और हर बार माता यशोदा यही सोचती हैं कि भगवान विष्णु कृपा से बहुत बड़ी विपत्ति हमारे बालक पर आई थी लेकिन भगवान विष्णु ने इसको बचा लिया, इसका कष्ट दूर हो गया। फिर गोबर गोमूत्र सब छिड़क के सब शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं, नजर झाड़ती हैं कि अपने अभी कोई दोबारा बल आना है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि जितना भी सुरक्षा कर रहा है अपना और सबका ये कृष्ण ही कर रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य भगवान की ऐश्वर्य भाव ऐश्वर्य शक्ति प्रभावी नहीं होती है, वहाँ माधुर्य शक्ति के अंदर ये सब लीलाएं चलती हैं। क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति प्रभावित हो जाएगा तो भगवान की मधुर लीला वो संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐश्वर्य भाव प्रभावित नहीं हो पाता है। तो माता यशोदा को लगा कि अरे कैसे रोक दिया इसने। हाँ, लेकिन तुरंत ही माधुर्य शक्ति प्रभावी हो गई और माता के अंदर ऐसा भाव आ गया कि अरे वाह अभी इसके अंदर शक्ति आ रहा है, अभी अच्छा से खा पी रहा है, अभी शक्तिशाली हो रहा है तुरंत। और उनको मोह पैदा हो गया और उसी भाव में वो लाला को गोद में उठाती हैं और स्तन पान करना प्रारंभ कर देती हैं। भगवान के स्तन पान करते हैं और उसी समय माता यशोदा मटकी में दही मथ रही थी माखन निकालने के लिए और कुछ दूरी पर कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया था। जैसे कि चक्रवर्ती प्रभु ने बताया कि प्रश्नों के क्लास में कि कुछ स्पेशल गाय थी पद्मगंधा गाय जिसमें कुछ स्पेशल घास दिया जाता था, स्पेशल चारा दिया जाता था और जो दूध उस गाय का निकलता था बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च कोटि का दूध था जो कृष्ण और बलराम के लिए दिया जाता था। तो माता यशोदा इधर माखन निकाल रही थी लेकिन ये तो आज खत्म हो जाएगा, ताजा माखन निकलेगा कृष्ण को खिला दूंगी, कल भी माखन चाहिए, तो कल के लिए दूध उबालने के लिए कढ़ाई पर रख दिया था, उधर दूध उबल रहा था कि ये हो जाएगा, इसके बाद उसको दही जमाऊंगी फिर कल माखन निकालूंगी, कल की भी तैयारी चल रही थी उनकी सेवा के लिए। तो उसी समय जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाना चालू किया, हाँ, तब तक उस दूध में उफान आ गया, जो दूध उबल रहा था आग के ऊपर, उफान आ गया। माता यशोदा ने सोचा कि चलो ये तो अपना दूध है, स्तन का दूध रहेगा ही, लेकिन यदि वो दूध गिर गया तो फिर कल की समस्या हो जाएगी, कल कैसे कैसे माखन बनाऊंगी। तो मैं जाती हूँ उस दूध को उतार के आ जाऊंगी, उसके बाद फिर इसको दूध पिला दूंगी। इनके अंदर ऐसा भाव आया माता यशोदा का कि अपना स्तन का दूध तो रहेगा ही, आके पिला दूंगी, लेकिन वो दूध यदि गिर गया तो फिर समस्या हो जाएगी, कल कैसे दूध पिलाऊंगी। तो ऐसा भाव आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को उतार दिया गोदी से। तो एक आचार्य लिखते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही हैं, और दूध जो उबलता है, प्रायः प्राचीन समय में जो दूध उबाला जाता है तो उसको तेज आंच पर, तेज आंच के आंच पर नहीं रखा जाता, मिट्टी का जो मटकी होता है वो बहुत ही मधुर आंच पर पकता है, धीरे धीरे, स्लो, आग में नहीं पकता है, बहुत स्लो रख दिया जाता है मिट्टी के मटकी, क्योंकि आग पे रखेंगे तो मटकी फट जाएगी, इसलिए स्लो जो गाय का कंडा होता है उसके ऊपर ही रखा जाता है। तो वो जो उसका जो पकता है धीरे धीरे स्लो आंच पे, तो बहुत ही स्वादिष्ट दूध होता है मटकी का, जो लोग पिए होंगे उनको अनुभव होता होगा, हुआ होगा कैसे वो दूध पकता है। मुझे एक लीला याद आ गई परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का और राधा रमन महाराज जी का। तो ये घर की लीला है महाराज जी का, गौर कृष्ण महाराज बताया करते थे एक दो जगह महाराज की ग्लोरिफिकेशन में, कि प्रायः पहले जो घरों में दूध पकता था ऐसे ही पकता था, मटकी में रख के, और उसका एक स्पेशल घर होता था, घर के अंदर दीवार के अंदर उसको डाल दिया जाता था कि वहां बिल्ली और कुछ ऐसे न पहुंच पाए, फिर जारी लगा दिया जाता था। तो जब धीरे धीरे पकता था तो उसके ऊपर, और वो दूध बहुत गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे पकता है, बहुत गर्म नहीं होता, उसके ऊपर बहुत मोटा साड़ी जम जाता है। तो पहले के लोग दूध बहुत पीते थे, तो गुरु महाराज पहले दो दो तीन तीन दूध पी जाते थे अकेले, हाँ, उतना क्षमता था उनका, गांव के लोग थे। तो महाराज क्या करते थे, कभी कभी आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, गेहूं के पौधे को जब उखाड़ेंगे तो उसके बीच में गैप होता है, जैसे हम नारियल का पानी पीते हैं, हम तलाशरी में जाता है कोई तो उसको हम पाइप, प्लास्टिक वाला पाइप नहीं देते हैं, तो हम कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके बीच में ऐसा गैप होता है, वो काट के देते हैं, लोग उसी से पीते हैं, सब लोग उसी से पीते हैं। तो उसी प्रकार गेहूं का जो पौधा है उसको यदि आप बीच से काटेंगे तो उसके बीच में इतना बड़ा निकल जाता है गैप, जिसमें पाइप जैसा रहता है। तो महाराज जी उसको बना लेते थे खेती में जाके, और दूध को जब थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया जाता था दही वही जमाने के लिए, घर की स्त्रियां बना के चली जाती थी, तो महाराज जाते थे और वो सीधे मटकी के अंदर वो डाल देते थे पाइप, और पूरा दूध पी जाते थे, साड़ी ऊपर का ऊपर रह जाता था। तो जब स्त्रियां घर में जाती थी पकाने के लिए तो ये दूध किधर गया, क्योंकि बिल्ली पिएगा तो साड़ी हटाएगा, ऊपर का जो लेयर हो हटाने के बाद पिएगा, सब खा के हट जाएगा, लेकिन बिल्ली तो हटा नहीं सकता है, तो ये पूरा दूध गायब और पूरा साड़ी पड़ा हुआ है, दूध किधर गया, लोगों को चिंता हो जाए दूध किधर गया। लेकिन जवाब महाराज भी बोलते दूध किधर गया, सब लोग पूरा परिवार उसमें शामिल हो जाता था, दूध किधर है किसी को पता नहीं चलता था कि दूध किधर है। तो एक बार हो गया और दूसरा बार भी ऐसा हो गया, तो एकदम आश्चर्य का विषय हो गया कि दूध जा कहाँ रहा है। तो थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि चोरी करने के बाद कुछ तो भाव चेहरे का बदलेगा ना। तो राधारमण महाराज कुछ कुछ समझ रहे थे, कुछ कुछ तो लीला चल रही है बड़े महाराज जी की। तो राधारमण महाराज थोड़ा स्पेशली ध्यान लगाए कि क्या होता है देखते हैं, और फिर राधारमण महाराज पीछे पड़ गए कि क्या हो रहा है। तो एक बार जब महाराज जी ऐसे पी रहे थे लगा के रूम के अंदर, राधारमण महाराज पहुंच गए, देख लिया उन्होंने, राधारमण महाराज ने देख लिया, बोले क्या ये लीला चल रही है आपकी, उन्होंने बोले चुप आ तुम भी पी ले इधर ही बैठ के, सॉरी। तो जस्ट ऐसे लीला गौरकिश महाराज ने और बताया था, ये प्रसंग ऐसा है तो याद आ गया। तो उसी प्रकार मिट्टी के पात्र में दूध को रखा जाता था। तो एक आचार्य लिखते हैं कि दूध तो बहुत स्लो पकता है और भगवान कृष्ण अभी अभी आके माता का स्तन पान कर रहे हैं, और स्तन पान करने में ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 मिनट लगता है बच्चों को पान करने में। अभी उसी समय दूध के अंदर उफान क्यों आ गया, उसी पीरियड में क्यों उफान आ गया, क्यों आ गया। तो एक आचार्य लिखते हैं कि क्योंकि बहुत सारे आचार्यों की टीका है, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, हरिशौरी प्रभु, बलदेव विद्याभूषण, सब लोगों की टीकाएं हैं, जिसमें से महाराज का कथा का ही सब प्रसंग है। अलग अलग कथाओं महाराज ने बोला है, उसी कथा को हम रिपीट कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो महाराज जी बताते हैं कि एक आचार्य लिखते हैं कि दूध उसी समय दूध में क्यों उफान आ गया, तो क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जो भी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं चिन्मय जगत में, सब कुछ चिन्मय होती है, कोई जड़ वस्तु नहीं होती है, वहां का दूध भी चिन्मय है। तो दूध ने ऐसा सोचा कि भगवान सोकर उठे हैं और इतने आनंद से माँ के स्तन का दूध पान कर रहे हैं और कुछ समय बाद इनका पेट भर जाएगा, और पेट भरने के बाद उसको किसी व्यक्ति का पेट भर गया उसको अब अमृत भी खाने को तो टेस्ट नहीं आता है। कितना भी स्वादिष्ट प्रसाद हो, एक बार पेट भर गया तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उस दूध ने सोचा, कौन से दूध ने, जो दूध खौल रहा था उसने सोचा कि अभी तो इतने अच्छे से दूध पी रहे हैं और कुछ समय बाद इनका पेट भर जाएगा और मैं यहाँ इतना जल के तपस्या कर रहा हूँ, अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा है बेचारा और इतना तपस्या कर रहा हूँ, फिर हमको तो पूछेंगे नहीं, इतना जलूं तपस्या करूं लेकिन पूछेंगे नहीं, उनका पेट भर जाएगा। तो उसके अंदर ऐसा ख्याल आया कि इतना मैं तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ उनकी सेवा के लिए, लेकिन हमको तो पूछेंगे नहीं, और यदि ये जीवन उनके काम नहीं आया, ये जीवन भगवान के काम नहीं आया, तपस्या किया सब कुछ किया लेकिन भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस जीवन का रख कर फायदा क्या है, इससे अच्छा है कि आग में कूद के सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। तो उसी समय दूध ने ऐसा सोचा कि चलो आग में कूद के मर जाते हैं, तो इसलिए उफान आ गया, उसी समय उफान आ गया, ये रीजन था। हाँ, क्योंकि सब कुछ चिन्मय होता है, इसलिए सत्यव्रत मुनि दामोदराष्टकम की जब व्याख्या कर रहे हैं तो पहले श्लोक में लिखते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियो लोकलाधवमानं परामृष्टमन्त्यन्ततो द्रुतगोप्या। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो दूसरे लाइन में लिख रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, कि जिनके कानों में कुंडल शोभित हो रहा है, कुंडल शोभित हो रहा है अर्थात भगवान किसी चीज को धारण करते हैं, किसी आभूषण को धारण करते हैं तो खुद सुंदर लगने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान खुद ही कृष्ण है, सर्वाकर्षक है और भगवान सदैव से इतने इनका सौंदर्य ही इतना अच्छा है कि उनको शोभा, उनको आभूषण पहनकर सुंदर लगने की आवश्यकता नहीं, जैसा हम लोग धारण करते हैं। यदि भगवान किसी चीज को धारण करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कुंडल की शोभा बढ़ गई है। आचार्य लिखते हैं कुंडल की शोभा बढ़ गई है और उसके सौभाग्य की सराहना भी टीका में करते हैं, सनातन गोस्वामी की टीका है जिसमें उस कुंडल के सौभाग्य की सराहना करते हैं कि कितना सौभाग्यशाली है ये कुंडल जो भगवान के कानों में झूल रहा है। बोले क्या सौभाग्य इसका, तो बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि में जाते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और अनेक अनेक जन्मों के बाद उनके भक्ति का यदि फल मिलता भी है तो क्या मिलता है, भगवान के चरण कमलों के अग्रभाग का दर्शन मिल सकता है, भगवान का दर्शन मिल सकता है, लेकिन इसका सौभाग्य देखो कि भगवान के कानों में झूल रहा है और जब चाहिए तब भगवान के गालों का चुंबन कर सकता है, उसकी पहुंच यहाँ तक है जो कि सामान्यतः कोई नहीं पहुंच सकता है। तो कितना सौभाग्यशाली है कुंडल की जब चाहे नाचकर उनके गालों को चूम सकता है भगवान के, तो इसका सौभाग्य कितना बड़ा है, ये कोई सामान्य कुंडल नहीं है जो भगवान के कानों में झूल रहा है। तो ये आशा है बताने का कि भगवान की सेवा में जो कोई भी चीज प्रयुक्त होती है तो सब शोभायमान हो जाती है और सब कुछ चिन्मय होती है। भगवान की शोभा उस वस्तु के कारण नहीं है बल्कि भगवान जुड़ने के कारण उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, हाँ, उस स्थान की सबकी शोभा बढ़ जाती है, सबकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए तो भक्तों की महिमा है, भक्तों की महिमा क्यों, भक्ति भी तो व्यक्ति होते हैं लेकिन क्यों उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान से जुड़ जाते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं और अमर हुए हैं लोग, उनकी योग्यता इतनी है कि भगवान से जुड़ जाते हैं। और बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक प्रसंग इस संदर्भ में आता है रामायण का, रामायण का, और वो प्रसंग है जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ है, भगवान रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वन में निकल गए हैं और पहले दिन का जो विश्राम है उन्होंने विश्राम किया है निषाद राज के यहाँ, वहां पर रुके हैं, वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ है और इसके बाद फिर भगवान राम वहां से निकल कर फिर चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। भरत जी थे नहीं, भरत जी ननिहाल में थे, वहां से आते हैं और उनको पता चलती है सब घटनाएं। इसके बाद अयोध्या की जो घटना उस पार्ट को छोड़ दीजिए, फिर उनका दिल निश्चय होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जाऊंगा और भगवान श्री रामचंद्र जी को मना कर लेकर आऊंगा। और समस्त ग्राम वासियों को इकट्ठा करते हैं कि सबके अंदर खुशी की लहर आ गई, क्योंकि सब लोग प्राय मृत प्राय हो गए थे भगवान रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर जब गए थे। लेकिन ऐसा जब भरत जी के उद्गार को सुना तो मानो सबके अंदर जीवन आ गई और सब लोग तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए, हाँ सब लोग तैयार हो गए आने के लिए। और जब आते हैं उस समय जब पहुंचते हैं गंगा जी किनारे, और निषाद राज पहले तो वो भी एक लंबा प्रसंग है, मैं संक्षेप में सार के ऊपर आता हूँ। तो निषाद राज जी आते हैं और वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी उनको आशीर्वाद देते हैं, और वशिष्ठ जी भरत जी से बताते हैं कि ये निषाद राज हैं जिन्होंने भगवान राम की सेवा किया था और जहाँ भगवान राम ने आश्रय लिया था, इन्होंने आश्रय दिया था और भगवान राम की सेवा की थी। और इतना सुनते ही निषाद राज और भरत जी सामने, और निषाद राज चरणों में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो ही प्रणाम करके उठते हैं तो भरत जी के अंदर ऐसा ही विचार आ रहा है कि ये इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को आश्रय दिया, इनकी सेवा किया, ऐसा विचार कर रहे थे। और ज्यों ही निषाद राज उठे तुरंत दौड़कर जाकर निषाद राज को गले लगा लेते हैं, निषाद राज को गले लगा लेते हैं। निषाद राज मना कर रहे हैं, सोचते सोचते भरत जी जाकर उनको गले लगा लिए, और गले लगा लिए। और निषाद राज को एकदम आश्चर्य हो गया, क्योंकि निषाद एक अछूत जाति है, जो कुछ छूता नहीं, दूर से प्रणाम किया जाता है, दूर से वो लोग लाइक एक नीच जाति थी। लेकिन भरत जी जैसा व्यक्ति उनको गले लगा रहा है, तो निषाद राज जी बड़े आश्चर्य में है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, आज सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, वशिष्ठ जी भी मेरा गुणगान कर रहे हैं, ये कब से मेरे अंदर ऐसा गुण आ गया। तो बहुत सुंदर एक लाइन लिखते हैं निषाद राज के भाव को, कि राम किन्न आपन जब ही थे, भयहु भुवन भूषण तब ही थे। कि ये मेरा कोई गुण नहीं है, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वास्तव में भगवान राम ने मुझे क्या स्वीकार कर लिया कि पूरा संसार ही मुझे स्वीकार कर रहा है, पूरा संसार ही मेरा गुणगान कर रहा है। हाँ, भयहु भुवन भूषण तब ही थे, हाँ पूरे संसार का मैं तो भूषण हो गया, सब लोग मुझे आलिंगन कर रहे हैं, सब लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं। कब? जब भगवान रामचंद्र जी ने मुझे स्वीकार कर लिया तब। तो कहने का आशय यही है कि हाँ, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कोई वस्तु भगवान से जुड़ती है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। जैसे श्री राधाराज बिहारी जी यही फूल मार्केट में बिकते हैं, और इसी फूल का तरह तरह से प्रयोग होता होगा, कोई गर्लफ्रेंड के लिए लेगा, कोई शादी की पार्टी के लिए लेगा, कोई इसके लिए लेगा, कोई उसके लिए लेगा, लेकिन वही फूल वही माला आपको भगवान को अर्पित हो गई, फिर सुबह सुबह कितना सम्मान दिया जाता है, राइट? लोग धारण करते हैं, लेते हैं, माथे चढ़ाते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, हाँ, और कितना वैल्यू बढ़ जाता है। सामान्य फूल है जो मार्केट से आया हुआ है और उसका कई तरह से लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जस्ट भगवान को ऑफरिंग होने के कारण इसका कितना महत्व बढ़ गया है। वही अन्न है, वही भोजन है, लेकिन भगवान को अर्पित हो जाता है, फिर कितना महिमा बढ़ जाता है। वही दूध है, शहद है, द्रव्य है, लेकिन भगवान का चरणामृत बन जाता है तो कितना महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान से जो कुछ भी चीजें जुड़ती हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। तो कुंडल के ऊपर इतना सुंदर व्याख्या हो रही है कि उसकी शोभा बढ़ गई, कुंडल की शोभा बढ़ गई, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रसंग बता रहा था। तो यहाँ पर दूध ने ऐसा सोचा कि अरे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मेरे जीवन का अधिकार है, इसे अच्छा है, चलो मैं सुसाइड करके मर जाता हूँ। हाँ, और यहाँ माता यशोदा का ऐसा भाव है, सबका भाव अलग अलग है, दूध का ऐसा भाव, माता यशोदा का ऐसा भाव, इनका भाव भी आएगा सामने, इनका भाव भी आएगा। तो ये जब माता यशोदा दूध के पास गई, तो जो ही दूध के पास गई तो आचार्य बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि दूध उबाल में आप उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है या आंख कम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं किया माता यशोदा ने, सिर्फ दूध के पास पहुंची और दूध का भाव दोबारा चेंज हो गया, उसको शर्मिंदगी आ गई, शर्म से झुक गया, अर्थात अपने आप बैठ गया। क्यों शर्मिंदगी आ गई? उसको लज्जा आ गई कि अरे अरे अरे, अपने स्वार्थ के लिए मैंने भगवान के आनंद में बाधा डाल दिया। भगवान आनंदित थे, इतना आनंद से पान कर रहे थे, दूध पान कर रहे थे माता यशोदा का, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, हाँ कि मुझे नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा भाव करके मैंने भगवान के सेवा में बाधा डाल दिया, भगवान के आनंद में बाधा डाल दिया, धिक्कार है। ऐसा करके फिर शर्मा जाता है, और शर्माने के बाद क्या होता है, आदमी का चेहरा झुक जाता है, तो अपने आप दूध बैठ गया, तुरंत बैठ गया। माता यशोदा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन किन्मा लीला चल रही है, इधर ये हो गया और इधर इनका भाव अभी बढ़ेगा, इनका भाव आ गया, अभी माता सोना तुरंत उठाएगा, क्योंकि तुरंत उठाना पड़ता है, दूध उबाल में फेंक देगा। तो माता सोना क्या किया, दूध पिला रहे थे उठाई और ऐसे नीचे रख के चले गए। अभी इनको क्रोध आया, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हाँ, सब ऐश्वर्य छोड़कर, सब प्रकार के सुख छोड़कर, अनंत कोटि लक्ष्मियां मेरी सेवा करती हैं, सब सुख सुविधा छोड़कर इस घर में आया, जन्म लिया, हाँ, इसका सौभाग्य, इसे सौभाग्य बढ़ाने के लिए मैं इधर आया। और चलो ठीक है, जमीन पे सुला दिया, कोई बड़ी बात नहीं, डेली तो गद्दा पर बेड पे सोता ही हूँ, कम से कम नीचे एक चटाई डाला होता, नीचे चटाई भी डाला होता तो कुछ वैल्यू, कुछ इज्जत होता। अरे कोई मेहमान भी आता घर पे आसन देते हैं बैठने के लिए ना, ऐसे ही बस उठाया और ऐसे ही छोड़ के चली गई। और किसके लिए, 2-4 लीटर दूध के लिए। अरे 9 लाख गाय है मेरे बाप के पास, कितना, 9 लाख गाय है, और उसमें से 2-4, 10-15 लीटर दूध गिर भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, दूध की कमी है हमारे पास, हमारे घर में दूध की कमी तो है नहीं। हाँ, इसको दूध की ज्यादा चिंता, इस ग्वालिन को, महाराज बोलते इस अहिरिन को, इस ग्वालिन को दूध की ज्यादा चिंता है और मेरी चिंता नहीं है। हाँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, रात भर से 4 बजे का खाया हूँ, अनुभव है कितना भूख लग जाता है। हाँ, 4 बजे खाया हूँ, 4 बजे सो के उठा हूँ और मुझे भूख लगी है, मेरे भूख की चिंता नहीं है इसको, और इसको दूध की चिंता है, 2 लीटर दूध गिर जाएगा। हाँ, और एक बिस्तरा भी नहीं दिया, हाँ, जहाँ की अनंत अनंत लक्ष्मियां मेरी सेवा में लगी होती हैं, और यदि वो लोग देखेंगे मेरी ये दशा तो फिर क्या होगा। हाँ, जैसे कि महारानी कुंती, जब ये दामोदर लीला का प्रसंग हुआ था, भगवान कृष्ण को बांधा गया था, तो समय कुंती महारानी भी थी हस्तिनापुर में, सॉरी वृंदावन में कुंती महारानी भी थी, और कुंती महारानी ने इस लीला को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए अपनी प्रेयर्स में, अपनी प्रार्थना में, कौन सा श्लोक है वो, गुप्यादय गीतागसी दाम तावत। हाँ, तो ये लीला अपनी आंखों से देखा था, और कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कि क्या तुम वही भगवान है जो रो रहा था, माफी मांग रहा था, माँ के हाथ में लाठी देखकर आज इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, तुम वही कृष्ण है। हाँ, तो उनको भी आश्चर्य होता है कि यही कृष्ण है जिसको मैंने देखा था, और आज रक्षक बना हुआ है, सबका पालन कर रहा है। तो जब ऐसा सोचती तो मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो वो भी भ्रम में पड़ जाती हैं। तो मानो भगवान किस सोच रहे हैं कि सब लोग देखेंगे लीला हमारी और बोलेंगे देखो अरे क्या वैल्यू है, ऐसे सुला के चली गई, क्या इज्जत है, कोई सम्मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। तो उनको अपनी सम्मान की आ गई कि क्या इज्जत हमारा बिगाड़ा इसने, हाँ ऐसे सुला के चली गई, हाँ तो मैं भी दिखाता हूँ इसको, मजा से खाता हूँ, अभी मजा सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने मटकी देखा, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ना इस मटकी की वजह से हो रहा है, हमको छोड़कर आई सुबह सुबह मटकी की वजह से, उधर गई क्यों, कल के मटकी की वजह से, कल इस मटकी में दही जमाना है, तो जो कुछ हो रहा है इस मटकी की वजह से हो रहा है, तो इसका ही हरि बोल कर देता हूँ, इसका ही हरि बोल कर देता हूँ, क्या करूं क्या करूं। तो बहुत बुद्धिमान है कृष्ण। तो उसी समय उन्होंने देखा, यहाँ पर कंकड़ लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, और कुछ आचार्यों की टीका से महाराज जी ऐसा बताते हैं कि वो लोढ़ा था, कंकड़ मतलब पत्थर, पत्थर मतलब लोढ़ा, लोढ़ा मतलब समझ रहे हैं, पहले स्टील बाटी चलती थी घर में मसाला पीसने के लिए, जब मिक्सर मशीन नहीं था, हाँ, मिक्सर मशीन नहीं था तब लोढ़ा चलता था, तो बगल में उधर ही लोढ़ा था। हाँ, लोढ़ा उठा लिए, छोटा सा लोढ़ा था, लोढ़ा उठा लिए, इसके बाद बहुत ही दिमाग लगाया उन्होंने, क्योंकि आधा मटकी भरा था, आधा मटकी मथनी चलता है, पूरा भर के नहीं चलता है, तो ऊपर से यदि मारेंगे ना, ऊपर से फोड़ेंगे तो खट करके आवाज आएगा, क्योंकि पेनी खाली रहे, जितना खाली रहेगा तो जब टूटेगा तो बहुत तगड़ा आवाज आएगा। तो उन्होंने वहां नहीं मारा, वहां भी दिमाग लगाया उन्होंने, तुरंत आवेश में काम नहीं किया, तो उन्होंने सोचा कहां मारने से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बहुत दूर का फासला नहीं था, बदला लेना था इनको, बस अपमान हुआ है, अपमान का बदला अपमान। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर नहीं मारा, नीचे में, क्योंकि मछली चलते चलते नीचे का जो मिट्टी होता है वो नम हो जाता है, पानी की तरह फैल जाता है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, नीचे मटकी को मार के तोड़ दिया, मटकी को मारा नीचे, पूरा दही ऐसे फैलने लगा। तो गुस्सा था, क्योंकि यहां बोल रहे हैं लाल लाल होठों को अपने दांत से दबाया, क्रोध आ रहा था, और क्रोध में लोढ़ा उठाया, क्रोध व्यक्ति कुछ भी कर देता है, क्रोध में उठाया और मारा और फूट गया। अब फूटने के बाद फिर इनका क्रोध शांत हो गया, जब गुस्सा में हम कुछ कर देते हैं और जब बड़ा गलती कर देते हैं तो हमारा गुस्सा में, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो इनको भी मारने के बाद एहसास हुआ कि अरे अरे मैंने क्या कर दिया, कर क्या दिया मतलब फोड़ दिया, लेकिन अभी माता यशोदा ने इतना मेहनत किया है, अभी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इनका तुरंत गुस्सा ठंडा हो गया। अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, माता ऐसा छोड़ेगी नहीं, अभी तो मारेगी, पिटाई होगा मेरा, तो क्या करने का है। तो उसी समय सोच रहे भागना है, अभी भागना है तो ऐसा सोच रहे हैं तब तक दही पूरा फैलते जा रहा है, सामने पूरा समुद्र की तरह फैल गया दही, इनके लिए समुद्र था। अब ये सोच रहे हैं कैसे भागू मैं, सामने दही है। तो उसके ऊपर भी एक आचार्य लिखते हैं कि वाह भगवान आपकी क्या लीला है, इति दिश्व लीला भीरानंद कुंडे, हाँ मधुर मधुर लीला करके भगवान लोगों के चित्त को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं भागना है, खड़े हो गए लेकिन भागू कैसे, अभी सामने सब दही फैला हुआ है। हाँ तो एक आचार्य लिखते हैं कि वाह वाह रे ठाकुर वाह, हाँ जब बलि महाराज के पास गए थे और वहां पर तीन पग में आपको पूरा ब्रह्मांड नापना था, तो क्षण भर में आपने नाप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और थोड़ा सा एक फीट का पासला नापने के लिए आप इतना जोर डाल रहे हैं, कैसे जाऊं कैसे पार करूं, हाँ क्या चल रहा है आपका, हाँ कि आप दही को डाकने के लिए इतना सोच रहे हैं, अरे सामने कैसे पार करूं, दही में पैर चला जाएगा। और जब ब्रह्मांड को नापना था, क्षण भर में आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, इतना शरीर बड़ा कर लिया, और अभी आपको इतना जोर देना पड़ रहा है कि कैसे भागू किधर से भागू। अब फिर भी दिमाग नहीं काम किया इनका, क्या किए फिर उसी दही के ऊपर पैर रख के धीरे 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 चले गए। किस घर की तरफ गए, उस घर में गए जहां माखन का स्टोर रूम था, उस घर में गए। उस घर में क्यों गए, उस घर में गए उसके पीछे रीजन था, कारण यह था कि गए और वहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। वहां गए और माखन निकाल के खाने लगे। क्यों माखन निकाल के खाने लगे, स्वेच्छा से। तो मानो अब डर तो था कि मैया यशोदा डांटेगी, पता तो चल जाएगा कि मैंने फोड़ा है। और बहुत दिमाग लगाया वहां पे, तीन चार आचार्यों ने अलग अलग अपने अपने टिकाए दिए, मैंने पढ़ा भी थोड़ा अलग जगह से। तो उनको पता था कि माता यशोदा खोजते हुए आएगी, तो वहां बैठ गए, एकांत स्थान में बैठ गए और माखन धीरे धीरे खाने लगे। वास्तव में भूख नहीं था, अभी क्रोध में किसी को भूख आता है, डर में किसी को भूख आता है, भूख नहीं था, लेकिन अभी प्लानिंग चल रहा है कि बचना भी तो है ना। तो मानो ऐसे जाके आराम से माखन खा रहे हैं। क्यों माखन खा रहे हैं, तो इसलिए माखन खा रहे हैं कि माता यशोदा खोजते खोजते आएगी तो उसको मैं दिखाऊं कि देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी माखन मिला है इधर उधर से मैं निकाल के अभी खा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा था। हाँ तुम उतार के चली गई, मैं क्या करूं, मैं आके इधर माखन खा रहा हूं, अभी अपने से निकाल के खा रहा हूं, अभी कौन सा ताजा है कौन सा बासी है हम कुछ पता नहीं है, मुझे भूख लगी इसलिए मैं माखन खा रहा हूं बैठ के, ताकि मैया यशोदा को लगे कि हाँ ठीक है भूखा है और भूख की वजह से इसने ऐसा किया है। तो निकाल के माखन खा रहे हैं और खाते खाते फिर बंदर भी आए, उधर बंदर भी देख रहे थे, और जब बंदरों को देखा भगवान ने तो फिर उनको अपनी रामलीला याद आ गई, दया आ गई भगवान रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण को, और उनको अपनी रामलीला का प्रसंग याद आया कि इन बंदरों ने मेरा बहुत मेहनत किया है और बिना तनख्वाह के बिना पेंशन के इन लोगों ने मेरी सेवा की है, कोई तनख्वाह उनका नहीं दिया था। हाँ विभीषण जी को कुछ तो दिया था विदाई के समय, बहुत लोगों को कुछ विदाई में भगवान ने दिया था, लेकिन इन बेचारे बंदरों कुछ भी नहीं मिला था। बंदरों को कुछ भी नहीं मिला था। एक बार बंदरों को हनुमान जी के अनुरोध पर अपने ससुराल की यात्रा कराई थी, वहां पार्टी हुआ था इनके लिए। वो भी पर गौर किशोर गोस्वामी महाराज का बहुत सुंदर एक प्रसंग है, तो बता देता हूँ, अच्छा प्रसंग है, महाराज जी बहुत आनंद लेते थे इस प्रसंग को बताने में। एक बार जनक महाराज से लेटर आया, जब अयोध्या में भगवान का राजा अभिषेक हो गया, सब बैठ गए, राज सिंह चल गए, यहाँ सीता माता आई थी और इसके बाद कुछ समय बाद वनवास हो गया था और कुछ हुआ नहीं, तो ससुराल पहली बार तो जाते हैं जब दामाद उनका बहुत आवभगत होता है, सेवा होती है, तो ये सेवा का अवसर जनक जी को नहीं मिला था। जनक जी ने लेटर भेजा कि अभी सब कुछ व्यवस्थित हो गया है तो बेटर है कि एक बार आप ससुराल घूमिए। तो रामचंद्र जी ने उसको नकार दिया था। कुछ दिन बाद लेटर दोबारा आया तो रामचंद्र को जाना था, कौन नहीं जाना चाहता है, अभी जो लोग शादी विवाह किए होंगे पहले बार ससुराल का अनुभव ही अलग होता है। तो रामचंद्र जी जाना चाहते थे लेकिन थोड़ा समस्या था। समस्या क्या था कि पूरे गेस्ट लोग रुके हुए थे, कुछ कुछ लोग चले गए थे लेकिन बंदर लोग रुके हुए थे, भगवान कहाँ भेजे कहाँ जाएंगे बेचारे सब इतने। तो कुछ दिन रुके थे और ध्यान में आनंद ले रहे थे, बहुत मेहनत किया था और भगवान रामचंद्र जी बहुत ही शुभ चिंतक है क्योंकि उनके आश्रित थे और इनको कोई राज्य चलाना तो है नहीं, खाया पिया आनंद लिया, बस ऐसा जीवन था, उनको कोई टेंशन था नहीं, तो बस खा पी रहे थे, आनंद ले रहे थे। और भगवान रामचंद्र जी डर लग रहा था कि यदि मैं जाऊंगा तो ये लोग तो मानेंगे नहीं। हाँ, तो भगवान रामचंद्र जी इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन कैसे भी तो खबर हनुमान जी से कुछ छुपा नहीं, हनुमान जी को पता चल गया कि ऐसा लेटर आ रहा है और ससुराल जाने का लेटर आ रहा है, उनको ससुराल जाना है लेकिन नहीं जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी के पास हनुमान जी गए और बोले समस्या क्या है प्रभु? बोले समस्या यही है, लेटर आ रहा है, ससुराल जाना है, लेकिन आप तो मालूम है। क्या मालूम है, क्या प्रॉब्लम है? बोले देखो अभी मैं जाऊंगा तो हमारे सब ये लोग भी जाएंगे, ये लोग तो मानेंगे नहीं, और आपको मालूम है बंदर जाति, तो ससुराल का कुछ भाई मान सम्मान है अपना, अपने साथ कुछ भी चलता है, लेकिन ससुराल में जाऊंगा तो। तो हनुमान जी बोले सॉरी, हरे कृष्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी बाणी सेना है उसका लीडर मैं हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई चिंता नहीं है, आज चलिए यथाशीघ्र शुभ कार्य है और थोड़ा आनंद दीजिए प्रभु, हम लोग भी थक गए हैं। अब उसी समय को जस्ट उसी पीरियड की बात है, सब लोग आके जब रुके हुए थे उसी समय की बात है, लंका से आए थे। तो बोले कि ठीक है प्रभु, इससे अच्छा क्या सौभाग्य, चलो थोड़ा आनंद लेंगे, आपके ससुराल घूम लेंगे, कहाँ हम लोग को अवसर मिलने वाला है दोबारा, कहाँ हम आएंगे, इसी साथ आपके साथ थोड़ा घूम भी लेंगे। हनुमान जी रामचंद्र जी बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हमारे अंदर ही भावना है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ ये ससुराल का बात है, ये ऐसे वैसे जगह हम नहीं जा रहे हैं। बोले प्रभु मैं आपसे वचन देता हूँ ना, लिख के देता हूँ, सबका जिम्मेदारी मेरा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे लोग, आप गारंटी कार्ड मैं दे रहा हूँ, आप चलो भेज दो कि हम आ रहे हैं, डेट फिक्स हो गया। भगवान राम ने फिर भी कहा कि देखो इनका स्वभाव मैं जानता हूँ, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ इनके साथ में। हनुमान जी बोले आप मत टेंशन लो, मैं सब ट्रेनिंग देता हूँ, आज से ट्रेनिंग चालू कर देता हूँ। फिर हनुमान जी उसी दिन ट्रेनिंग चालू कर दिए, ऐसा रहेगा, देखो ऐसा होगा, जिनको जो फ्लैट दिया जाएगा, जिनको जो वार दिया जाएगा, उधर ही रहने का, इधर उधर कूदने का नहीं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में नहीं जाने का, सीमा जहां जहां रहेगा उधर ही रहने का सब लोग। हाँ, जब खाने को बुलाया जाएगा तभी खाने का, किसी का चश्मा नहीं छोड़ने का, किसी का ये नहीं करने का, सब सिखा दिया गया वहां पर, बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनको परेशान नहीं करने का, किसी को डराने का नहीं उधर। हाँ, क्योंकि हम प्रेम से जा रहे हैं तो वहां थोड़ी लीला नहीं करने का। तो उस दिन ट्रेनिंग चालू कर दे, खूब ट्रेनिंग हुआ, कम से कम महीना भर ट्रेनिंग दिया हनुमान जी। भगवान रामचंद्र बोला कि सब तैयारी होगी, सब तैयारी होगी, पूरी सब ट्रेंड हो गए, एकदम ट्रेंड कर दिया सबको। हाँ, और अलग अलग लीडर, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग लीडर बना दिया मैंने, सब यात्रा लेके जाते हैं तो लीडर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सबका एकदम मैंने तैयार कर दिया, सब तैयारी हो गया और मैंने ट्रेनिंग दे दिया और सबको अपने कंट्रोल में रखूंगा। ओके ठीक है, पहुंच गए सब लोग ससुराल में, सबको सबका वार्ड नंबर, रूम नंबर, एसी, नॉन एसी, जिसको जैसे सीनियरिटी जूनियरिटी सबको सब कुछ दे दिया गया। और हनुमान जी ने बोला कि सब लोग आराम से रहिए, और खाने का यहाँ पर नियम यह है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्विस होगा, इधर उधर कहीं नहीं घूमना है किसी को। हाँ, सब लोग अपने रूम में बैठे रहिएगा, किसी को घूमना नहीं, रूम से कोई बाहर नहीं निकलेगा। और जब घंटी बजेगा सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे, तो उस समय आप लोग अपना अपना प्लेट लेकर आने का खाने का, सबको प्लेट भी दे दिया गया कि अपना अपना प्लेट लेकर आने का खाने के लिए। ठीक है, तो बंदर तो बंदर, हनुमान जी आर्डर दिए, समझा दिए और चले गए। एक बंदर के अंदर खुरापात, बंदर स्वभाव से खुरापाती होते हैं। हाँ, वो 6 बजे सुबह सुबह उठा, 6 बजे का 6 बजे घंटा मार दिया, 6 बजे घंटा मार दिया, किचन में आधा पका हुआ प्रसाद, आधा नहीं पका हुआ, तैयारी चली जा, घंटा बजा दिया और सब प्लेट अपना बजाते बजाते सब लोग बाहर आ गए, लाइन लग गए। अरे प्रसाद भी लाइन, सब लोग बैठ गए प्रसाद में तो क्या होता है, हमको मालूम है, चिल्ली चिल्ला भांस हो जाता है। फिर हनुमान जी भी आए, बोले क्योंकि नियम लिस्ट में लगा था 7 बजे घंटा बजेगा, 6 बजे घंटा कौन बजा, कौन बजा, कौन बजा, कौन बताएगा, कौन बजाएगा, जहाँ कोई स्पीड दिया था घंटा। हाँ, वो बताया था ये घंटा है यहाँ पर बजेगा, वो किसी ने देखा था, खुरापाती बंदर, और जाके कोई बजा दिया। और ये हनुमान जी पूछे कौन बजाया, कौन बजाया, कोई हाथ उठाएगा क्या, किसको मरना है? हाँ, तो कोई हाथ नहीं उठाया। हाँ, तो फिर एक सर्वेंट स्पेशली नियुक्त किया वहां पर 24 घंटा रहने के लिए, कि घंटा के पास रहने के लिए, कोई आके दोबारा। फिर बोले हनुमान जी सब लोग जाओ, अब 1 घंटा का टाइम है, 1 घंटे बाद आना है, किसी ने गलती किया, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। 1 महीना से तुम लोग को समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी आदत से बात नहीं आएगा तुम लोग। हाँ, फिर भी गलती माफ करता हूँ। एक वहां सर्वेंट नियुक्त किया 12-12 घंटे का, कि 1 घंटे के पास सिर्फ घंटा देखेगा। समय से घंटा बजा, 7 बजे ब्रेकफास्ट करके चले गए। पहला दिन का लंच था, और लंच था, और लंच में वो लोग गए थे उस समय के समय जब आम का सीजन था, मैंगो का सीजन था, और सब पात आमने सामने सबको बैठा दिया गया, सब लोग बैठ गए खाने के लिए, सब लोग खाने के लिए बैठ गए। सब तो खा लिया, दाल चावल रोटी सब्जी स्वीट खा लिया, आम सबसे लास्ट में खाना था, बड़ा बड़ा लंगड़ा देसी सब आम है बड़ा बड़ा। तो एक बंदर ने उठाया, और बंदर उठाने के बाद पका हुआ आम था उठाने के बाद दबाया, थोड़ा सा दबाया, और दबाया तो उसका जो आम का कोसरी था ऊपर चला गया। तो वो सामने वाला बैठा था, उसको लगा कि हमको चिढ़ा रहा है, हमको चिढ़ा रहा है। तो वो आम का कुछली ऊपर चला गया, तो इसने भी क्या किया, अच्छा तुम्हारा कुछली इतना ऊपर गया, देखो हमारा कुछली कितना ऊपर क्या तुमसे मेरा कुछली कम है क्या, वो दबाया और उधर उसका ऊपर कुछली चला गया। तो ये वो लाइन कुछ बगल वाले ने देखा, अभी कंपटीशन होगा, लाइन लाइन बैठे थे, कंपटीशन हो गया, अभी सब लेके दबाना चालू किया और पूरा आप सोचो आम पूरा ऊपर उड़ रहा है और पूरा आम कर रहा है, सब नहा रहे हैं उसी में, सब पूरा कंपटीशन फैल गया आम का कुछली किसका ऊपर जाएगा। एकदम भगदड़ मच गई, कहाँ खाना कहाँ पीना, बंदर तो बंदर हनुमान जी है। इसके बाद देखा लीला, बहुत पश्चाताप हुआ। फिर रामचंद्र जी भी आगे, क्योंकि प्रसादम हाल में पूरा भगदड़ मच गया ना, तो खड़े भी नहीं हो पा रहे क्योंकि पूरा आम का जूस खड़ा, जो खड़ा हो रहा, गिरे थाली ले लेके, एकदम गिरना, अच्छा एकदम स्थिति भयावह हो गई। हनुमान जी आ गए, रामचंद्र जी भी आ गए और सब लोग देख रहे हैं। फिर रामचंद्र जी हनुमान जी की तरफ देखा हनुमान जी की तरफ देखा, बोले क्या हुआ, बोले प्रभु क्या करे, स्वभाव है ना मैंने तो समझाया है लेकिन बंदर है, इनका स्वभाव है, क्या करें हम, स्वभाव से बाज नहीं आते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहा कि जो भी है लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय है, ये अपने हैं, तो मैं खुश हूँ, चलेगा, उनको रहने दीजिए ऐसे। तो भगवान राम का उदार हृदय है। ये कई बार परम पूज्य गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज इस लीला को बताएं और उसको कहने में उनके मुख से अलग ही आनंद आता था जब वो कहते थे इस लीला को। तो ऐसे ही जश प्रसंग में आया और मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी समय हो गया है तो प्रसंग हमारा यही था कि भगवान कृष्ण वहां माखन खाने लगे और उसी समय बंदरों को देखा, तो बंदरों को देखने के बाद भगवान को याद आया कि अरे इन लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, बिना वेतन के लोगों को खटाया था, अभी अच्छा है, अपना घर, अपने घर की संपत्ति है, उस ऋण से ऋण हो जाता हूँ मैं, ऋण से मुक्त करता हूँ अपने आप को। भगवान कृष्ण जितनी मटकी थी सबका मटकी का माखन खिलाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे और सब बंदर खाने लगे। और इसके बाद भी माता यशोदा आएंगी और भगवान की लीला देखेंगी और इसके बाद उनका उनका भाव क्या होगा, अभी अभी जैसे आगे प्रसंग हम सुनते जाएंगे कि अभी एक प्रसंग बहुत लंबा है। अभी जैसे माता यशोदा खोजते हुए आएंगी, खोजना बहुत कठिन नहीं था क्योंकि जब वो दही पर से चल के गए थे तो पश्चिम छोड़कर गए थे, तो माता यशोदा उनके पश्चिमों का अनुभव करते हुए जाएंगे उनके घर में और ये लीला देखेंगे। लीला के बाद उनका क्रोध बढ़ेगा कि क्या भाव आएगा, उसको हम कल या परसों के श्लोक में सुनेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, नितय गौर प्रेमानंदे।